परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
जय 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 यीशु, जय 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 प्रभु,
जय 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 यीशु,
जिसको खोजे ये मन मेरा,
कितना पावन नाम है तेरा, पल पल तुझको सब कुछ मेरा।
मित्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको नमस्कार। मुझे आशा है कि प्रतिदिन की तरह आज भी आप सब इस बाइबल अध्ययन में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पिछले अध्ययन में हमने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 40 अध्याय को देखा था, जिसमें हमने यूसुफ के द्वारा स्वप्नों का अर्थ बताना और उनका पूरा होना देखा था, और इस बात को भी देखा कि जो बातें घट रही थी वह परमेश्वर की अगुवाई में घट रही थी, अर्थात हो रही थी। आज हम अपना अध्ययन उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय से आरंभ करेंगे। यह अध्याय पहले के अध्याय से क्या ही भिन्न है, जहां हमने यूसुफ को बंदीगृह में भूल जाने के लिए असहाय और त्यागा हुआ छोड़ दिया था, फिर भी ये सब कुछ परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उसके जीवन में हो रहा था। यदि आज हम परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में स्वीकार कर लें तो यह हमारे जीवन में एक अलग पहचान देगा। हम इस अध्याय में देखेंगे कि यूसुफ को बंदीगृह से छोड़ दिया गया है जब उसने राजा के स्वप्नों का अर्थ बताया तब, और वह पूरे मिस्र देश की भूमि का अधिकारी अर्थात मंत्री ठहराया गया है, और उसने याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से विवाह किया जो ओन नगर से थे। यूसुफ के दो पुत्र आसनत से उत्पन्न हुए, मनश्शे और एप्रेम। मित्रों, यह कहानी एक गरीबी से अमीरी तक की है। मैं कोई भी ऐसी काल्पनिक कहानी नहीं जानता हूं जो यूसुफ के जीवन की इन बातों से बढ़कर और अधिक रोमांचित हो। इस अध्याय में हम परमेश्वर के हाथ को निश्चित रूप से उसके जीवन में देख सकते हैं, और विपत्ति के समय भी यूसुफ को परमेश्वर की सहायता का एहसास था। इसने उसके अंदर बहुत सारे सद्गुणों को बढ़ाया जो आत्मा का फल है। उनमें से एक सहनशीलता थी। हम रोमियो के पत्री 5 अध्याय और उसके 3 पद में जो सच्चाई प्रकट की है उसमें हम देखते हैं क्लेश से धैर्य उत्पन्न होता है, उसे यूसुफ के जीवन में निश्चित रूप से ठीक पाते हैं। यहां पर हम पाते हैं कि इस लड़के को फिरौन राजा के सामने लाया गया, एक अन्य जाति के राजा के सामने, जैसे बाद में दानियल भी राजा नबूकदनेज़र के सामने लाया गया। इन दोनों ने ही स्वप्नों का अर्थ बताया। तब इस अध्याय के अंत में हम अकाल पर विचार करेंगे, इसके द्वारा परमेश्वर का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। परमेश्वर इसे याकूब के परिवार को कनान देश से बाहर निकालने के लिए उपयोग करेंगे, उन्हें कनानियों के पापों से दूर और मिस्र देश में लाकर गोशेन के एकांत प्रांत में स्थिर करेंगे। यह भी उनका एक उद्देश्य था। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के और भी कई कारण होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सच और स्पष्ट था। मित्रों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मुझे आशा है कि आप सब इस बात को ध्यान में ले रहे होंगे कि किस तरह यूसुफ यीशु मसीह की तरह है। हम इसके बारे में और अधिक तुलना बाद में करेंगे। यह हम सबों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा कि हम इन सब को ध्यान में लेते रहें। मित्रों, अब हम आगे राजा के स्वप्न के विषय में देखेंगे। आपको याद होगा कि पिछले अध्याय में हमने देखा था कि राजा के प्रधान साकी और प्रधान रसोइये उसी बंदीगृह में डाले गए थे जहां पर यूसुफ कैद था। यूसुफ ने उनके स्वप्नों का अनुवाद बिल्कुल सही किया, रसोइया को लटका दिया गया और साकी को फिर से उसका पद दे दिया गया। यूसुफ ने साकी से निवेदन किया था कि वह राजा के सामने इसके बारे में बताए, अर्थात उसे राजा के सामने याद करें, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। पर अब परमेश्वर एक स्वप्न राजा को दिखाते हैं, जिसे हम उत्पत्ति 41 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, पूरे दो वर्ष बीतने पर फिरौन ने एक स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पिछले अध्याय को बंद हुए पूरे दो वर्ष बीत चुके हैं। यूसुफ ने और दो साल कैद में बिताए यह इंतजार करते हुए कि कुछ तो होगा। तब यहाँ पर हम राजा फिरौन के स्वप्न को पाते हैं और उत्पत्ति 41 अध्याय उसके 2 और 3 पद में हम आगे पढ़ते हैं। और देखो, नील नदी में से 7 सुंदर और मोटी गाय निकलकर कछार की घास चरने लगी। तब उसने देखा कि उनके बाद और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल हैं नील नदी से निकली और दूसरी गायों के पास नदी के किनारे पर जा खड़ी हुई। यहाँ पर गाय हैं और हम यहाँ पर मवेशियों के बारे में बात कर रहे हैं। उसने 7 गायों को देखा जो मोटी और अच्छा खाने वाली और सुंदर थी। उसके बाद उसने और 7 गायों को देखा जो कुरूप और दुर्बल थे। इसके बाद हम उत्पत्ति 41 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं, और इन कुरूप और दुर्बल गायों ने उन 7 सुंदर और मोटी गायों को खा लिया। तब फिरौन जाग उठा। मित्रों, फिरौन नींद से जाग गया और सोचने लगा कि स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है। उसके पास स्वप्नों का अर्थ बताने वाला कोई भी नहीं था, परंतु उस दिन उसे सहायता करने वाला कोई भी ना मिला। तब हम उत्पत्ति 41 अध्याय के 5 से 8 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और वह फिर सो गया। तब उसने दूसरी बार स्वप्न देखा कि एक डंठल में से 7 मोटी और अच्छी अच्छी बालें निकली। तब उनके बाद 7 बालें पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई निकली, और इन पतली बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल लिया। तब फिरौन जागा और उसे मालूम हुआ कि यह स्वप्न था, और ऐसा हुआ कि सुबह के समय उसका मन व्याकुल हो उठा। अतः उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और विद्वानों को बुलवा भेजा, और फिरौन ने उनको अपने स्वप्न बताए, परंतु उनमें से कोई भी उनका फल फिरौन को न बता सका। जब राजा ज्योतिषियों, जादूगरों और विद्वानों को बुलाकर उन्हें अपना स्वप्न बता रहा था, उस समय प्रधान साकी भी वहां पर था, और जो भी हो उसका पद राजा के सामने खड़े रहना और जो वह मांगता था उसे दिलाना था। जब सभी विद्वान और ज्योतिषी अर्थ बताने में असमर्थ रहे, तब प्रधान साकी ने राजा से इस प्रकार कहा, जिसे हम उत्पत्ति 41 अध्याय और उसके 9 पद में पढ़ते हैं। तब प्रधान साकी ने फिरौन से कहा, आज मेरे अपराध मुझे स्मरण आते हैं। मित्रों, मैं इसे गलती से बढ़कर मानता हूँ। मेरी दृष्टि में या विचार में वह पाप था, परंतु आप देखें कि यह सब कुछ परमेश्वर का पूर्व प्रबंध के अनुसार था। हम इसे परिस्थिति का या आकस्मिक योगदान कहेंगे। उस समय यूसुफ के उस कठिन अनुभव को नहीं समझा जा सकता था, परंतु परमेश्वर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब कुछ होने दे रहे थे। और अब प्रधान साकी कहता है, ओह, अभी मैं याद कर रहा हूं कि बंदी गृह में मैंने एक जवान से वायदा किया था कि मैं उसके बारे में आपसे कहूंगा, और जो भी हो, हे राजा, वह आपके स्वप्न का सही अर्थ बता देगा। अब वह अपने अनुभव को राजा से कहता है, जिसे हम उत्पत्ति 41 अध्याय और उसके 10 से 13 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब फिरौन अपने दासों से क्रोधित हुआ था और उसने मुझे प्रधान रसोई के साथ अंगरक्षकों के प्रधान के भवन के बंदीगृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के अनुसार एक एक स्वप्न देखा। वहां हमारे साथ एक इब्री नवयुवक था जो अंगरक्षकों के प्रधान का दास था। हमने उसको ये स्वप्न बताए और उसने हमारे स्वप्नों का फल बता दिया। प्रत्येक को उसके स्वप्न के अनुसार उसने अर्थ बता दिया, और जैसा अर्थ उसने बताया था वैसा ही हुआ। मुझे तो मेरा पद फिर से मिला, परंतु उसे फांसी पर लटका दिया गया। तब फिरौन ने कहा, ठीक है, हमने यहां पर चारों तरफ से सबको परखा, और जबकि उस जवान ने तुम्हारे और रसोई के स्वप्नों का सही अर्थ बताया है, तो मैं चाहता हूं कि उसे यहां पर लाया जाए, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि मेरे स्वप्न बहुत ही महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण हैं। मित्रों, आगे हम देखते हैं कि यूसुफ राजा के स्वप्न का अर्थ बताता है, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय और उसके 14 पद में पढ़ते हैं। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और उन्होंने झटपट उसे बंदीगृह में से निकाला, और जब उसने बाल कटवाकर वस्त्र बदल लिए तो वह फिरौन के पास आया। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यूसुफ ने अपने बाल कटवाए, और आप इस बात को अवश्य याद रखिए कि उन दिनों में यहूदी लोग बाल नहीं कटवाते थे। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि मिस्र की मूर्तियां और चित्रकारी में पूर्ण रूप से दाढ़ी निकाले हुए लोगों को दिखाते हैं? बहुत से शासक मजाक में बकरे की तरह छोटी सी दाढ़ी रखते थे ताकि उनके पद में थोड़ी प्रतिष्ठा बढ़े। यदि उनकी दाढ़ी नहीं बढ़ती थी तो वे बनावटी दाढ़ी लगाते थे, लेकिन साधारणतः मिस्री लोग अपने चेहरे पर बाल नहीं रखते थे। मित्रों, इसमें एक अद्भुत संदेश है। इस व्यक्ति यीशु को अब बंदीगृह से बाहर निकाल लिया गया है। वह अपनी दाढ़ी बनाता है और अपने बंदीगृह के वस्त्र को उतारकर अच्छे कपड़े पहनता है। यह उसके सामने एक नया जीवन था। यह एक प्रकार से पुनरुत्थान के समान था। वह अब जी उठा है, अर्थात खड़ा हो गया है, और अब वह अन्य जाति के पास जाता है। मित्रों, यहाँ पर यीशु मसीह का क्या ही अद्भुत चित्रण हमें दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 15 पद में हम आगे पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है, परंतु उसका फल बताने वाला कोई नहीं, और मैंने तेरे बारे में यह सुना है कि तू स्वप्न सुनकर उसका अर्थ बता सकता है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यीशु परमेश्वर को कैसे महिमा देता है। उत्पत्ति 41 अध्याय उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो नहीं, परंतु परमेश्वर ही फिरौन के हित में उत्तर देगा। यूसुफ के दृष्टिकोण से परमेश्वर को अवश्य ही महिमा मिलनी चाहिए। मित्रों, मैं फिर से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की संतान को सावधान रहना चाहिए कि उसकी सारी उपलब्धियों के लिए वो परमेश्वर को महिमा दे। यदि हम जो कुछ करते हैं वो आशीषमय है, तो वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमारे माध्यम से उसे कर रहा है। यूसुफ इससे परिचित था और वह कहता है, मैं तो नहीं, मैं इसका अर्थ नहीं बता सकता हूं, परंतु परमेश्वर ही फिरौन के हित में उत्तर देगा। तब राजा फिरौन अपने स्वप्न को यूसुफ के सामने दोहराते हैं। वास्तव में यह एक ही स्वप्न है, परंतु दो हिस्सों में है, और इसे एक ही स्वप्न के रूप में लिया गया। हम उत्पत्ति की पुस्तक के 41 अध्याय के 25 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो कुछ करने वाला है उससे उसने फिरौन को बताया है। मित्रों, यूसुफ फिरौन से कहता है कि स्वप्न एक ही है, और दोनों ही स्वप्न एक बात के या एक विषय को ही बताते हैं। और सच्चाई तो यह है कि यह दोहराया गया है और फिरौन को दो बार दिखाया गया है, जो इसके महत्व को दर्शाता है। इस स्वप्न को देने का कारण यह था कि परमेश्वर चाहते थे कि फिरौन जाने कि वे क्या करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर स्वप्न का अर्थ है, जिसे हम उत्पत्ति 41 अध्याय के 26 से 31 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वे सात अच्छी गायें 7 वर्ष हैं, और 7 अच्छी बालें 7 वर्ष हैं, स्वप्न एक ही है। फिर वे 7 दुबली पतली और कुरूप गायें जो उनके बाद निकली, वे 7 वर्ष हैं, और जो 7 पतली और पुरवाई से मुरझाई हुई बालें निकली, वे अकाल के 7 वर्ष हैं। यह वही बात है जो मैं फिरौन से कह चुका हूं कि परमेश्वर जो कुछ करने वाला है उसे उसने फिरौन को बताया है। सुन, सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत के आने वाले हैं, उनके बाद 7 वर्ष अकाल के आएंगे, और मिस्र देश में यह बहुतायत भुला दी जाएगी और अकाल देश को जकड़ लेगी, अर्थात उजाड़ देगी। इसलिए देश में बहुतायत का स्मरण ना रहेगा, क्योंकि बाद का अकाल अत्यंत भयानक होगा। मित्रों, आप इसे देखें कि यह एक भविष्यवाणी है। 7 वर्ष तक बहुतायत के होंगे और तब 7 वर्ष तक अकाल रहेगा। आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक के 41 अध्याय और उसके 32 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब फिरौन के लिए इस स्वप्न को दोहराया जाने का अर्थ यह है कि यह बात परमेश्वर की ओर से निश्चित हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। मित्रों, अकाल परमेश्वर के द्वारा निश्चित किया गया, और वह चाहते हैं कि फिरौन इसके बारे में जाने। और अब यहां पर यूसुफ की सलाह फिरौन के लिए इस प्रकार से है, जिसे हम उत्पत्ति 41 अध्याय के 33 से 37 पद में पढ़ते हैं। अब फिरौन किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को ढूंढकर मिस्र देश का अधिकारी नियुक्त करे। फिरौन को चाहिए कि वह देश में अधिकारियों को नियुक्त करने का कार्य करे और बहुतायत के 7 वर्षों तक मिस्र देश की उपज का पंचमांश लिया करे और वे इन आने वाले अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु इकट्ठा करे और उन नगरों में जो फिरौन अधिकार में है भोजन के लिए अन्न के भंडार बनाकर उसकी रक्षा करे और यह भोजन वस्तु अकाल के उन 7 वर्षों के लिए आरक्षित रहे जो मिस्र देश में आने वाले हैं, जिससे कि अकाल के दिनों में देश सत्यानाश न हो जाए। यह बात फिरौन और उसके सब कर्मचारियों को अच्छी लगी। मित्रों, यहाँ पर यीशु फिरौन को सलाह देता है कि इन 7 अच्छे वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तु को इकट्ठा करे और यह भोजन वस्तु भंडार में आरक्षित रहे उस अकाल के दिनों के लिए जो आने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि यूसुफ को मिस्र देश की भूमि पर अधिकारी ठहराया गया, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 38 से 41 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। तब फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या हम इसके समान कोई मनुष्य पा सकते हैं जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है? इसलिए फिरौन ने यूसुफ से कहा, जबकि परमेश्वर ने तुझे ये सब बातें बतला दी है, तेरे समान ऐसा बुद्धिमान और समझदार कोई नहीं है। तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी प्रजा चलेगी। केवल सिंहासन के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। और फिरौन ने यूसुफ से कहा, देख, मैंने तुझे मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहराया है। मित्रों, यहां पर इसके महत्व पर ध्यान दीजिए कि आरंभ में यह लड़का बंदी गृह में भुला दिया गया और सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था और अब वह सही समय पर और तरीके से बंदीगृह से बाहर लाया गया है, क्योंकि राजा के स्वप्न का अर्थ और कोई दूसरा नहीं बता सकता था। वह न केवल उसके स्वप्न का अर्थ बताता है परंतु अपने जोश व उत्साह के कारण वह राजा को सलाह भी देता है कि उसे क्या करना चाहिए। यह सब उसने किया क्योंकि वह एक योग्य व्यक्ति था और सही बात तो यह है कि इन सब बातों में परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा था। एक भीषण अकाल आने वाला था जो पूरे देश को प्रभावित करने जा रहा था और यहां तक कि मिस्र देश भी इस भीषण अकाल की चपेट में आने वाला था। मिस्र की भूमि सींचने वाली भूमि थी, यह वर्षा पर निर्भर नहीं रहती थी। ऊपरी नील नदी नीली नील जो मध्य अफ्रीका से बहकर आती है और जिस पर मिस्र सिंचाई के लिए निर्भर रहता है। मिस्र में जब अच्छी बारिश होती है तब उसे 1 इंच तक वर्षा का पानी मिल जाता है, लेकिन अब यह अकाल का समय है और यहां तक कि बारिश के मौसम में भी अकाल रहेगा। परंतु नील नदी प्रत्येक वर्ष पानी लेकर आती है और भूमि को सींचती है। यह ना सिर्फ पानी का स्तर बढ़ाती है परंतु इसके साथ साथ अच्छी उपजाऊ खाद व मिट्टी भी लाती है। जो भी हो, परमेश्वर ने यह चेतावनी दी है कि 7 साल तक अकाल पड़ेगा और इससे मिस्र देश भी प्रभावित होगा। जैसे ही राजा यूसुफ की बातों को सुनता है, यह उसे उचित मालूम पड़ता है जो यूसुफ ने उससे कहा। उसने कहा, यह बहुत ही बुरा है कि हमारे अपने देश में और हमारी सरकार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान व जानकारी हो। कुछ देशों की विदेश नीति विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध के पहले वर्ष तक, यहां तक कि हिटलर के दिनों में उसके शक्ति में आने तक कुछ कम या ज्यादा प्राथमिक उपचार के कार्यक्रम जैसे थे और कुछ बड़ी तेजी से आपातकालीन माप के रूप में अंदर आया। किसी ने एक बार ग्लैडस्टोन से पूछा कि किसी महान राजनेता का माप क्या होता है। उसने कहा, वह व्यक्ति जो अगले 50 वर्षों में परमेश्वर की दिशा में कार्य करने वाले हैं उसे जानता हो। और यहाँ उत्पत्ति की पुस्तक में फिरौन को बताया गया कि अगले 14 साल में क्या होने जा रहा है। मित्रों, हमारा देश भी इस प्रकार के व्यक्ति का उपयोग कर सकता है। अब यूसुफ से बढ़कर इस पद को कौन संभाल सकता था? राजा ने इस बात को जान लिया कि वो ही योग्य है। क्या अब आप नहीं देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उसे पोतीपर के घर में प्रशिक्षण दे रहे थे? हम अचंभित हो सकते हैं कि संसार में परमेश्वर ने उसे सबसे पहले उसी घर में क्यों जाने दिया। अब हम इस बात को जान गए हैं कि वहां पर उसने कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किए, जहां पर उसे पूरे मिस्र देश की अधिकारी बनने का प्रशिक्षण पहले से मिल गया था। अर्थात पोतीपर के घर के सभी कार्यों का अधिकारी वही था जो पोतीपर का था, और अब वह मिस्र देश के सभी वस्तुओं पर अधिकारी होने जा रहा था। यह उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन था। उसने बंदी गृह से राजा की गद्दी अर्थात सिंहासन के बगल तक की यात्रा तय की है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 41 अध्याय के 42 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब फिरो ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसे महीन मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की माला डाल दी। मित्रों, उस अंगूठी में मुहर थी और जब यह मुहर किसी वस्तु में लग जाती थी तो वो राजा के हस्ताक्षर के समान होता था। राजा यूसुफ को अपना प्रतिनिधि बना रहे थे और उसके पास यह अधिकार था कि वह राजा के हस्ताक्षर का उपयोग कर सकता था। अब हम आगे उत्पत्ति 41 अध्याय उसके 43 और 44 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब उसने उसे अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और वे उसके आगे आगे यह घोषणा करते गए, घुटने टेको, और उसने उसे संपूर्ण मिस्र देश पर अधिकारी ठहराया। फिरौन ने यूसुफ से यह भी कहा, यद्यपि मैं फिरौन हूं, फिर भी सारे मिस्र देश में तेरी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति हाथ या पैर हिलाने ना पाएगा। मित्रों, आज के अध्ययन को हम यहीं पर रोक देते हैं क्योंकि हमारा समय समाप्त हो गया है। इसलिए हम अगले अध्ययन में यूसुफ के विषय में और भी अधिक बातों को जानेंगे, तो आप लोग अगले अध्ययन में अवश्य ही उपस्थित रहें। मुझे विश्वास है कि आप सब भी यूसुफ के जीवन से अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करें और अपनी अनुग्रह प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।